ओम शांति। क्लास चल रहा था 20-69 का रात्रि क्लास। पहले पेज के मध्यादि में बात चल रही थी, तुम ब्रह्मा कुमारियां समझाते हो कि हमको ब्रह्मा नहीं समझाते हैं, ब्रह्मा के मुख कमल द्वारा शिव बाबा समझाते हैं। सुनाने वाला भी शिव बाबा है और समझाने वाला भी शिव बाबा है। शिव बाबा जो सभी आत्माओं का बाप है, वो एक ही है। जब समझ जाएंगे कि हम सभी भाई भाई हैं, तो जरूर बाप एक है, उनसे नई दुनिया का ही वर्षा मिलेगा। खास खास बातों पर अटेंशन जाए और उन बातों पर ही समझाया जाए तो बहुत अच्छा है। और सभी में अच्छा है ये ड्रामा का चक्र, तुम समझाए सकते हो कि ये नरक है, दुख की दुनिया है, अंधकार की दुनिया है, आधा टाइम अंधकार और आधा टाइम सोझरे की दुनिया होती है। तो अंधकार की दुनिया और सोझरा दोनों को मिलाकर ये सुख दुख का चक्र है। आधा टाइम सुख आधा टाइम दुख, अंधेरे में ठोकरें खानी होती हैं, बहुत दुख पड़ता है तो टाइम लंबा हो जाता है, सुख मिलता है तो टाइम का पता ही नहीं चलता। तो दुख की दुनिया में दुख का टाइम लंबा होने से दिन गिने जाते हैं, और सुख की दुनिया में टाइम का पता ही नहीं चलता तो दिन गिनने की बात ही नहीं। जिस दुख की दुनिया में दिन गिने जाते हैं उसे हिस्ट्री कहा जाता है। हिस्ट्री 2500 वर्ष की मिलती है, जहां दुख की दुनिया होती है और वो दुख की दुनिया धर्म गुरुओं की दुनिया है। मनुष्य धर्म गुरु आते हैं, धर्म पिताएं आते हैं और दुख की दुनिया बनाते हैं। उनको कहा जाता है परधर्म। शिव ने जो धर्म स्थापन किया उसको कहा जाता है स्वधर्म। इसलिए गीता में लिखा है स्वधर्मे निधनम से परधर्मो भयावह। भय होता है तो दुख भी होता है। तो दुख की दुनिया है 2500 वर्ष और सुख की दुनिया भी 2500 वर्ष की है, दुख की दुनिया के दिन गिनने में आते हैं। हिस्ट्री का मनुष्यों को पता है कि और धर्म पिताएं जो मनुष्य गुरु है वो 2500 वर्ष के अंदर आए हैं। चाहे इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट कोई भी हो, वो दुख की दुनिया में आए हैं, सुख की दुनिया का कोई को पता नहीं है। मनुष्य को नर कहा जाता है। नर को नारायण बनाने के लिए भगवान आते हैं। नर नरक बनाता है, भगवान आकर नर को नारायण बनाते हैं तो स्वर्ग बन जाता है। नारायण की दुनिया है स्वर्ग, तो नई दुनिया स्वर्ग और पुरानी दुनिया नरक। इन दोनों दुनिया के बारे में तुम अच्छी तरह समझा सकते हो। बाप तो तुम्हें श्रीमत देते हैं, जो विद्वान पंडित आचार्य हैं उनको समझाने में फिर भी अच्छा है। वो कुछ डिबेट भी करेंगे, तुम समझाएंगे कि हमको समझाने वाला कौन है। जो हमको समझाने वाला है उनका बेहद का पार्ट है, सबसे अच्छा पार्ट है, वो हमारा बेहद का बाप है। हद का बाप नहीं है, बेहद आत्माओं का बाप है, उनका सबसे ऊंचे ऊंच पार्ट है। तो बहुतों को भी ऐसे बाप से ऊंच पद मिलेगा, ऊंचे से ऊंचा बाप, ऊंचे से ऊंचा धाम, उनका ऊंचे से ऊंचा नाम। सब धर्म वाले उस बाप को याद करते हैं, तो जरूर ऊंचे ऊंच पद मिला होगा, ऊंचे ऊंच सुख मिला होगा उस बाप से। अंदर में इन बातों की बुद्धि तो चलती है ना कि हमें ये बातें समझाना चाहिए कि उस ऊंचे ऊंच बाप भगवान को सारी दुनिया क्यों याद करती है। क्यों याद करती है? कुछ प्राप्ति हुई होगी तो याद करती है। तो जहां भी समझाने की मार्जिन है तो तुम बच्चों को भागना चाहिए। जिनको सर्विस का शौक होगा वो भागेंगे। वो ये कब नहीं कहेंगे कि इतना दूर हम कैसे जावे। बाबा कहते हैं सर्विस के लिए भल खर्चा करना पड़े कोई हर्जा नहीं है। ऐसे नहीं, ये तो बहुत दूर हैं, 8-10 माइल दूर है, सो क्या बात हुई, ट्रेन से भी भाग जाना चाहिए। खर्चे का ख्याल नहीं रखना है, बच्चों को सर्विस का शौक चाहिए। सो भी जो अनन्य बच्चे हैं उनको तो सर्विस का बहुत शौक होना चाहिए। ये अहंकार नहीं हो कि हम तो महारथी हो। अरे महारथी हो तो भागते रहना चाहिए। खाना भी वहां सर्विस पर जाकर खाना चाहिए। बाबा अच्छी तरह से जानते हैं बहुतों में देह अभिमान का रोग है, थोड़ी सी महिमा होने से ढीले पड़ जाते हैं। नहीं तो सर्विस से खूब चक्कर लगाते रहना चाहिए। ऑफिस का टाइम पूरा हुआ और भागा सर्विस पर, थोड़ा बहुत खाया और ये भागा। यहां भी बच्चों को सर्विस के डायरेक्शन मिलते रहते हैं, बाबा डायरेक्शन दे रहे हैं। जिनके मन में आता है हम अपने सेंटर का करें या फलाने की सर्विस करें, ये अपना अपना सब देहवान है, ऐसा देहवान नहीं आना चाहिए। बल बाबा जानते हैं, होता तो ड्रामा अनुसार ही, फिर भी बाप का काम है बच्चों को आगे के लिए चुस्त बनाना। अभी तो बच्चे बहुत सुस्त हैं, नहीं तो बच्चे चुस्त हो जाएं तो बहुत अच्छी सर्विस कर सकते हैं। ज्ञान मार्ग में आराम पसंद नहीं होना चाहिए। सर्विस पर कब नींद करते हैं क्या? दुकानदारी खूब होती है तो नींद आती है क्या? तो इसमें भी नींद क्यों आनी चाहिए? यहां तो बहुत नींद करते हैं, कहते हैं सर्विस ही नहीं। सेंटर पर तो बहुत सर्विस है, सर्विस पर होते अगर नींद करते हैं तो बाबा समझते हैं ये आराम पसंदी और देह अभिमानी है। सभी को सर्विस पर भागते रहना चाहिए। ईश्वरीय सर्विस की खुमारी हो, बाप को भी खुमारी है, हम जाकर के बच्चों को पावन बनाऊं, ये है बेहद के सर्विस की खुमारी। तो बच्चों को भी बेहद की खुमारी रहनी चाहिए। कल्प के बाद तुम बच्चे जानते हो कि बाप हमको ये जो सर्विस सिखलाते हैं, इस सर्विस से तो बहुत तकदीर जागती है। तो मुख्य मुख्य बातें जो हैं वो सारी दुनिया के विपरीत हैं जो बताई। गीता का भगवान सर्वव्यापी नहीं है, एक व्यापी है। ये षष्ठी चक्र का ड्यूरेशन 5000 वर्ष का है, लाखों वर्ष का नहीं है। मनुष्य आत्मा 84 लाख योनियों में नहीं जाती है, सिर्फ 84 के चक्र में आती है। गीता का भगवान शिव है, जिसे शिव शंकर भोलानाथ कहा जाता है। वो कोई कृष्ण बच्चा नहीं है जिसकी बैठ पूजा करते हैं। कृष्ण तो बच्चा बुद्धि है, राम बाप को कहा जाता है। शिव निराकार है, वो निराकार जरूर कोई साकार रूप धारण करके आता है और मुकर्रर रथ में आता है। तो ऐसी ऐसी मुख्य मुख्य बातें जो सारी दुनिया के विपरीत हैं, वो बातें तुम बच्चे ही समझा सकते हो, और तो कोई की बुद्धि में है ही नहीं। वो लोग तो समझते हैं इनको ब्रह्मा बाबा समझाते होंगे। ब्रह्मा को आप सुनाने वाला कौन है? वो तो समझते ही नहीं है। क्या कहा? कौन लोग समझते हैं? किरणों को ब्रह्मा बाबा समझाते होंगे। वो लोग जानते नहीं हैं कि ब्रह्मा को भी सुनाने वाला कौन है? ब्रह्मा को किसी ने सुनाया? ब्रह्मा को भी किसी ने सुनाया या नहीं सुनाया? किसने सुनाया? शिव बाबा ने सुनाया। तो प्रश्न होता है कब सुनाया? जरूर है यज्ञ के आदि में सुनाया, नहीं तो ब्रह्मा बाबा तो मुझे हुए थे। साक्षात्कारों का क्लैरिफिकेशन उन्हें कहीं भी नहीं मिला, तो उनकी मुझान किसने दूर की? शिव बाबा ने दूर की। कहते भी हैं गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वर, तो आखिरी तीनों जो मूर्तियां हैं शिव की, त्रिमूर्ति शिव कहते हैं, उन तीनों मूर्तियों में बड़ा कौन? कौन किसको ध्यान देता है? उन तीनों मूर्तियों में सुप्रीम मूर्ति कौन है? जरूर कहेंगे जो सुप्रीम मूर्ति है उसकी संख्या संसार में खुदाइयों में सबसे जास्ती तादाद में मिली, वो नग्न मूर्तियां शंकर की हैं, जिसे जैनियों में तीर्थंकर कहा जाता है। तुम्हारे जो तीन लोक का चित्र है उसमें भी सूक्ष्म वतन की तीनों मूर्तियों में सबसे ऊपर कौन दिखाया है? तो समझना चाहिए ना कौन किसको ज्ञान देता है, कौन सुप्रीम है। कुछ भी समझते नहीं तुम, कहते हो ये तीनों गुरु नहीं है, गुरु तो एक ही है जिसे सद्गुरु कहा जाता है। लिखते भी हैं सत्यमेव जयते, तो सत्य एक है या सत्य अनेक है? सत्य तो जरूर एक है। कहते भी हैं गॉड इज ट्रुथ गॉड इज वन, बाकी देहधारी तो कोई सच्चा गुरु नहीं हो सकता। देहधारी को शिव के साथ मिक्स नहीं किया जा सकता। 33 करोड़ देहधारी देवताएं हैं, परंतु उनमें से किसी को भी शिव के साथ नहीं जोड़ा गया, सिर्फ शंकर को ही शिव के साथ जोड़ा जाता है। तो ये पॉइंट भी समझा सकते हो कि शिव अलग है और शंकर अलग है। शिव सदैव निराकार है और शंकर साकारी भी है तो निराकारी भी है। याद में बैठे हैं तो किसकी याद में बैठे हैं? शिव की याद में बैठे हैं। तो बड़ा कौन हुआ? जिसकी याद में बैठे हैं वो बड़ा है, जो याद में बैठने वाला है वो छोटा है। इसलिए शिव का नाम पहले शंकर का नाम बाद में लेते हैं, कहते हैं शिव शंकर भोलानाथ। तो उन्होंने शिव शंकर को एक समझ लिया है। एक समझने की बात नहीं है, बात है पुरुषार्थ करके शिव सब शिव बाप समान बनने की। शिव बाप आते हैं तो आप समान बनाते हैं, बनने वाले तो नंबरवार ही होंगे। तो बाप कहते हैं मुझे अपनी देह नहीं है, फिर भी मैं सुप्रीम हूं, सुप्रीमेसी का पार्ट बजाता हूं। कृष्ण को कब गुरु नहीं कह सकते, ब्रह्मा को भी नहीं कह सकते और शंकर को भी सदगुरु नहीं कह सकते, क्योंकि वो भी याद में बैठा हुआ है। याद में बैठा है माना पुरुषार्थी है या नहीं है? पुरुषार्थी है तो उनको भी सदगुरु नहीं कहा जा सकता। तो ये भी दिखाना है कि एक ही सुप्रीम बाप है, एक ही टीचर है, एक ही गुरु है। वो बाप बाप भी है, हमको जन्म देने वाला है। क्या जन्म देता है? साकार बाप तो साकार बच्चे का जन्म देता है, वो तो निराकार बाप है तो क्या जन्म देता है? अरे निराकार बाप है तो जन्म क्या देता है? अरे जन्म देता है कि तुम आत्मा हो। पहले हम नहीं जानते थे कि हम आत्मा ज्योति बिंदु है, हम आत्मा निराकार हैं, हम आत्मा 84 के चक्र में आने वाले हैं। पहले हम नहीं जानते थे, अब जानते हैं कि हम आत्मा हैं और वो हम आत्माओं को जन्म देने वाला बाप है। ऐसे नहीं कि आत्मा पहले थी नहीं, थी तो आत्मा तो अजर हमारा विनाशी है, लेकिन हमको आत्मा का ज्ञान नहीं था। वो हमारा टीचर भी है, सुप्रीम टीचर है, उसको पढ़ाई पढ़ाने वाला कोई नहीं है। वो सारी दुनिया को पढ़ाई पढ़ाने वाला है, लेकिन उसको पढ़ाने वाला कोई नहीं। वो गुरु भी है। क्या करते हैं? सदगति करते हैं। पहले पहले मन बुद्धि रूपी आत्मा की सदगति करते हैं। आत्मा जो गड्ढे में जाने की स्वभाव वाली है, उस आत्मा को सदगति की ओर ले जाते हैं। सदगति किसे कहा जाता है? सच्ची गति, सत्य धाम की ओर बुद्धि जाती है। ये दुनिया तो झूठ धाम बन जाती है, इसे कहते हैं झूठ खंड। तो झूठ खंड से निकालकर हमारी मनोबुद्धि रूपी आत्मा को कहां ले जाते हैं? सत्य धाम में ले जाते, सच खंड में ले जाते हैं। तो बच्चे जानते हैं वो धाम है निर्वाण धाम, वहां वाणी की दरकार नहीं है। क्या वाणी की वहां दरकार ही नहीं है? दरकार नहीं है, फिर आत्माओं का आना जाना कैसे होता है? है इस सृष्टि पर आत्माएं आती है ना, तो कौन भेजता है? बाप भेजते हैं, कहते हैं कि जाओ। है कहते नहीं है, लेकिन स्वतः ही ऐसा वहां वाइब्रेशन उदा हुआ है, कुछ कहने की दरकार नहीं है। जिसका जो नंबर होता है, अपने नंबर पर वो आत्मा स्वतः ही इस रूपी रंगमंच पर पार्ट बजाने के लिए आती है। तो वो है निर्वाण धाम और वो है सुख धाम। सुख धाम में थोड़े मनुष्य होते हैं, दुख धाम में बहुत मनुष्य होते हैं, बाकी सभी निर्वाण धाम में चले जाते हैं। जो सुख धाम में होते हैं उनके अलावा जितनी भी मनुष्य आत्माएं हैं वो सब कहां रहती हैं? निर्वाण धाम में रहती हैं। कृष्ण तो है ही सत्युग में बैठा हुआ। तो बच्चों को विचार सागर मंथन करके सर्विस में लग जाना है, बाप को समझाना चाहिए कैसे कैसे लोग आते हैं और क्या क्या पूछते हैं। गोले पर ले जाते हैं क्योंकि तुमको तो समझानी है, और कोई तो गोले की समझानी समझा ही नहीं सकते हैं। अच्छा बच्चों को गुड नाइट। अगला रात्रि क्लास है 1968 का। तुम बच्चों की बुद्धि में है कि ये खेल है, सो भी बेहद का खेल है। इतना बड़ा और कोई खेल नहीं होता है। चित्र आदि यथार्थ रीति बनाए जाते हैं, क्योंकि भगवान से वर्षा मिलता है, स्वर्ग तो भगवान ही स्थापन करते हैं। क्यों, और कोई क्यों नहीं स्थापन कर सकता है? हैं? धीरे से क्यों बोलना, धार से बोलो। क्यों नहीं स्थापन कर सकता है कोई और स्वर्ग?
और जो आत्मा है वो स्वस्थिति में रहने वाली है।
हाँ, हैं भी तो सदा काल स्वस्थिति में रहने वाली नहीं है। अल्पकाल नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार स्वस्थिति में रहने वाली है, वो भी सिखाने वाला एक ही बाप है जो स्वस्थिति में बैठ बच्चों को रहना सिखाते हैं। तो जो सदैव स्वस्थिति में रहने वाला है वो ही स्वर्ग स्थापन कर सकता है, और कोई भी मनुष्य आत्मा स्वर्ग की स्थापना नहीं कर सकती। भगवान से स्वस्थिति का पहले पहले वर्षा मिलता है, तो भगवान ही स्वर्ग स्थापन करते हैं। और भगवान कौन है ये सहज समझने की बात है। क्या है सहज समझने की बात? कि जो स्वस्थिति स्थापन कर सकता है, स्वर्ग स्थापन कर सकता है, वो जरूर स्वस्थिति में रहने वाला है। और स्व कहा जाता है आत्मा को, पर कहा जाता है प्रकृति को। पांच तत्वों को पर कहा जाता है, माया को पर कहा जाता है, और भगवान को स्व कहा जाता है। तो शिव बाबा कहते हैं और कोई स्वस्थिति सिखाई नहीं सकता। लक्ष्मी नारायण को व कृष्ण को बाबा नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे? हैं? लक्ष्मी नारायण को व कृष्ण को बाबा नहीं कहेंगे, कारण क्या है? क्योंकि लक्ष्मी नारायण तो साकारी है और कृष्ण भी साकारी है। निराकार भी चाहिए, तो जहां निराकार और साकार दोनों का मेल है, जिस पर्सनालिटी में, उसे कहा जाता है बाबा। बेहद का बाबा है वो, सर्व का बाप है, और वो एक ही शिव बाबा है। कोई ने लिख कर दिया हो कि बरोबर गीता का भगवान शिव है, कृष्ण नहीं है, अभी तक भी बाबा के पास ऐसा वंडरफुल समाचार नहीं आया है, तो समझा जाता है बाज भी सर्विस नहीं चल रही है। मुख्य बात है ही गीता का भगवान कौन। पतित पावन ज्ञान का सागर परमपिता परमात्मा है। वो पतितों का पावन बनाने वाला सर्वव्यापी नहीं हो सकता। अगर सर्वव्यापी है तो सर्व को क्या हो जाना चाहिए? पतित से पावन हो जाना चाहिए। जरूर एक ही है जो सर्व को पतित से पावन बनाने वाला है। मुख्य बात ही समझाने की है कि परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है, फिर क्या है? एक व्यापी है। इन तीन बातों पर ओपिनियन लिखवाए भेजा, ऐसा कोई ने समाचार नहीं दिया। ऑफिसर आदि जो होते हैं वो इन बातों पर तो ध्यान ही नहीं देते हैं। सृष्टि किसने भी रची, हमारा इसमें क्या जाता है? ऑफिसर आदि क्या कहते हैं कि सृष्टि किसने भी रची, हमारा इसमें कुछ भी लेना देना नहीं है। और तुम तो जानते हो कि आखिरी में हमारी विजय होनी जरूर है। गंगा स्नान के लिए कितना हंगामा मचाते हैं, तो ये समझाना पड़े क्या कि पानी के स्नान से जड़ शरीर शुद्ध हो सकता है, परंतु आत्मा तो सूक्ष्म है। सूक्ष्म आत्मा को पवित्र बनने के लिए सूक्ष्म ज्ञान स्नान चाहिए, और ज्ञान स्नान चैतन्य करा सकता है या जड़ पानी की गंगा करा देगी। चैतन्य तो ज्ञान सागर परमपिता परमात्मा है, वो परमपिता परमात्मा ही आकर के नंबरवार शक्तियों के द्वारा ज्ञान का स्नान कराते हैं। उन शक्तियों में कोई ज्ञान गंगाएं हैं, कोई ज्ञान अमुना यमुनाएं हैं, कोई स्वदेशी नदियां हैं, कोई विदेशी नदियां। अब विदेशी नदियों में तो कोई स्नान करने जाते नहीं है। भारत की नदियों को पतित पावनी कहा जाता है, तो जरूर भगवान भारत में ही आए होंगे। मनुष्यों की इतनी बुद्धि नहीं है जो इन बातों को समझ सके। आवाज भी तब फैलेगा जबकि कोई विद्वान आदि निकले। अभी तक ऐसा ओपिनियन कोई का हाथ में नहीं आया है। समझ में आता है कि अभी प्रत्यक्षता दूर है। जब ये ओपिनियन हाथ में आ जावे तब भारत में थरथुल्ला मच जाएगा। क्या है ओपिनियन? कि परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है, एक व्यापी है, और वो एक व्यापी परमपिता परमात्मा शिव शक्तियों के द्वारा ज्ञान स्नान कराते हैं, तब तुम बच्चों की विजय हो और बहुत भागेंगे। होना तो है, वो खिवैया भी है। काहे का खिवैया है? है खिवैया किस लिए कहा जाता है? नाव को, जहाज को खेने वाला, उसको खिवैया कहते हैं। तो ये भी शरीर रूपी नैया है। इस शरीर रूपी नैया में आत्मा बिठैया है, और आत्मा रूपी बिठैया और शरीर रूपी नैया दोनों का खिवैया एक बाप है, इसलिए उसको खिवैया कहा जाता है। शरीर रूपी नैया और आत्मा दोनों का पार ले जाने वाला एक ही बाप है। भक्ति मार्ग में खिवैया मिलता ही नहीं है। जो सारी दुनिया को पार ले जावे, ये तो ज्ञान मार्ग है जिसमें तुम बच्चों को खिवैया की पहचान हुई है। सारी दुनिया खिवैया तो वो एक बापी है। कितने पत्थर बुद्धि मनुष्य हैं, कुछ भी नहीं समझते। मनुष्य कहते हैं कि हमारी कृष्ण में भावना है, तो हमारी भावना को तुम क्यों मिटाते हो? अरे तुम्हारी भावना ही झूठी है, ये कोई सच्ची भावना है क्या? झूठी भावना को हम नहीं मिटावेंगे तो फिर कौन मिटावेगा? ये तो रंग बात हो जाती है, छोड़ नहीं देना चाहिए। सच्ची भावना में बुद्धि लानी है, ये भी हम युक्ति रच रहे हैं। जो साहूकारों की कुमारियां हैं हम उनको भी सर्विस में लगा दें, साहूकार उनको भी अपने फ्लैट साथ दे देवे। आजकल कुमारियों को लाख दो लाख तो देते ही हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। ड्रामा अनुसार जैसे दहेज में सेंटर लिया है, ऐसे सिंधियों में भी बहुत निकलेंगे। एक फैशन पड़ जाएगा कि हम भी सेंटर बनाई देते हैं। जैसे निर्मला डॉक्टर का बाप बल ज्ञान में नहीं है, बोला बड़े सेंटर बनाओ, उसमें भी उनका कल्याण हो गया। क्योंकि बहुतों का कल्याण करते हैं ना, एक्सपेक्ट करते हैं, ड्रामा में ऐसा है, आगे चल के ये भी फैशन पड़ जाएगा। किस बात का? जो अपनी कुमारियों को सरेंडर करेंगे साहूकार लोग, वो साथ में मकान भी दे देंगे। निश्चय बुद्धि बच्चे समझते हैं राजा ही स्थापन जरूर होगी। मैं पास होऊंगा या नहीं होऊंगा ये दूसरी बात है। कहते हैं ना कि जो दुआ हुआ दूध है वो फिर वापस थन में नहीं जा सकता, जा सकता है? नहीं जा सकता। तो ड्रामा जो फिरता है वो फिर फिरता ही रहता है, वो ड्रामा कब बदल नहीं सकता। बच्ची को दहेज देंगे, बच्ची ईश्वरीय सर्विस में लग जाएगी, फिर उनके पास ढेर आते रहेंगे। जिनका कल्याण हो जाएगा तो उनकी आशीर्वाद उनके मां बाप को भी मिलेगी। अभी पुरुषार्थ किया जा रहा है कि गवर्नमेंट को पकड़ें, वो भी चाहती है कौन? गवर्नमेंट, कि बच्चों का मां बाप का क्वालिफिकेशन सुधारें। तो दिखाना चाहिए ये अच्छे क्वालिफिकेशन वाले थे, क्योंकि ये पवित्र थे। कौन? लक्ष्मी नारायण। पवित्रता से ही क्वालिफिकेशन आती है। इसमें जवानों के लिए युद्ध बहुत है। किसमें है? पवित्रता के लिए पुरुषार्थ करने में जो नौजवान हैं उनके लिए बहुत मेहनत है। और देखा जाता है कि कुमारों में फेल बहुत होते हैं, हैं? प्रैक्टिकल में, बेसिक में या एडवांस में क्या देखा? कुमारियां ज्यादा फेल होती हैं, अदर कुमारियां ज्यादा फेल होती हैं, अदर कुमार ज्यादा फेल होते हैं या कुमार ज्यादा फेल होते हैं? कुमार ज्यादा फेल होते हैं। जो अच्छे निश्चय बुद्धि बच्चे हैं वो समझते हैं कि फेल होते हैं तो कोई नई बात नहीं है, हमारी राजधानी तो फिर भी जरूर स्थापन होगी ही, जैसे कल पहले हुई थी, जो कुछ पास हुआ ड्रामा प्लेन के अनुसार ही पास होता है। तो फिर पास्ट की कोई बात की फिक्रात नहीं होनी चाहिए, ड्रामा को तो फिरना ही है। तो तुम बच्चों को प्रदर्शनी में मुख्य मुख्य छह बातों पर ओपिनियन लिखवानी है, कौन कौन सी छह बातें हुई? गीता का भगवान एक है, भगवान सर्वव्यापी नहीं, दो है, मनुष्य आत्मा 84 लाख योनियों में नहीं जाती, तीन षष्ठी चक्र 5000 वर्ष का है, गंगा पतित पावनी नहीं है, और शिव शंकर एक नहीं है। इनमें कल्प की आयु की बात है सबसे मुख्य, तो मुख्य मुख्य बातें निकालनी चाहिए। 84 लाख जन्मों की भी बात हो, अगर ये सभी की ओपिनियन इकट्ठी की तो तुम्हारा नाम बाला हो जाएगा। साबित तो हो जाएगा कलंकी धर 100 कलंक को धारण करने वाला। अब समझो कि कलंकी धर कौन है, ये गायन भी इन पर है, किन पर? इन पर है, इन कह के किस तरफ इशारा किया? राम और कृष्ण की आत्माओं की ओर इशारा किया। हाँ, अवतार तो शिव बाबा है, सबसे जास्ती कलंक तो शिव बाबा पर ही लगते हैं। इनको तो न जानने के कारण कहते हैं, कुछ भी होता तो फिर भी वही है जो कल पहले होता है। तो मुख्य मुख्य 5-6 जो बातें हैं उन पर बहुतों से सही लेनी है, और ये छपाया हुआ हो, और छपाए हुए को भी राइट करते जाओ, क्योंकि पहले पहले छपाएंगे तो कुछ गलती रह जाएगी, क्लियर करके छपाना चाहिए, नहीं तो सीधा सीधा छपाए देवे कि भगवान सर्वव्यापी नहीं है तो कोई की बुद्धि में नहीं आएगा, कोई पूछेगा नहीं क्या सर्वव्यापी नहीं है तो एक व्यापी कहां है? बेसिक में किसी ने पूछा है? 40 साल ये बेसिक ज्ञान चलता रहा ब्राह्मणों की दुनिया में, यही बताया जाता रहा भगवान सर्वव्यापी नहीं है, फिर कोई की बुद्धि में नहीं आया, कोई ने भी नहीं पूछा कि सर्वव्यापी नहीं है तो एक व्यापी कहां है? है
बिंदु,
बिंदु
बिंदु को
बिंदु बिंदु एक व्यापी कैसे पकड़ेंगे? वो तो बिंदु है, कहेंगे एक हमारा ये शरीर है, हमारी एक ही पर्सनालिटी, इसमें एक ही बिंदु, ये बिंदु ही परमात्मा है। तब अरे बिंदु ही परमात्मा है तो हर एक बिंदु परमात्मा तो नहीं है, हर एक बिंदु परम पार्ट बजाने वाली आत्मा है क्या? हर एक बिंदु हीरो पार्टधारी है। सवाल है कि वो एक हीरो पार्टधारी कौन है जिसमें सुप्रीम सोल शिव प्रवेश करते हैं, तो क्लियर करके लिखना पड़े। पोस्टर छपाने की भी बात की, पोस्टर में क्लियर करके लिखना पड़े कि भगवान सर्वव्यापी नहीं है, एक व्यापी है। फिर कहेंगे कौन एक व्यापी है, ये समझाना तो टेढ़ी खीर
है, जिसका नाम शिव के साथ जुड़ जाता है।
हाँ, तो वो भी क्लियर करके बताना चाहिए कि शिव बाप एक शंकर के स्वरूप में व्यापी होता है, इसलिए एक ही नग्न मूर्ति सारे संसार में यादगार में मिली है। इतनी मूर्तियां और कोई भी देवता की नहीं मिली है। अच्छा, मीठे मीठे रूहानी बच्चों को रूहानी बाप व दादा का याद प्यार, गुड नाइट। रूहानी बच्चों को रूहानी बाप का नमस्ते। ज्यादा दुख ब्रह्मा बाबा ने भोगा है बच्चों से या मम्मा ने भोगा है? ज्यादा ग्लानी ब्रह्मा ने सहन की है या मम्मा ने सहन की है? ब्रह्मा ने सहन की है। तो जिसने ब्राह्मणत्व जीवन में आखिरी जीवन में इतनी ग्लानी सहन की, इतना बच्चों का दुख सहन किया और बदले में सुख दिया, तो वो हिसाब किताब कब पूरा करेंगे? इसी संगम में पूरा करेंगे या सतयुग में पूरा करेंगे? हैं? संगम में पूरा करेंगे। तो संगम युग में ब्रह्मा की आत्मा महाकाली में प्रवेश करके उन आसुरी बच्चों से एक एक की सौ सौ गिनाएगी। सरस्वती नहीं प्रवेश करेगी। सरस्वती छोटी मां है या बड़ी मां है? हैं? बेसिक नॉलेज में बड़ी मां ब्रह्मा और छोटी मां सरस्वती। तो यहां भी, यहां छोटी मां कौन है और बड़ी मां कौन है? बड़ी मां जगदम्बा और छोटी मां लक्ष्मी। लक्ष्मी में छोटी मां प्रवेश करेगी और जगदम्बा में बड़ी मां प्रवेश करती है। बाबा की मुरली से पता चलता है, लेकिन प्रूफ तो नहीं है। प्रूफ के आधार पर वहाँ पढ़ाने वाला कौन था? छोटी माँ की पढ़ाई की प्रूफ है या बड़ी माँ की पढ़ाई का प्रूफ है? पढ़ाता कौन था और पढ़ता कौन था? है? बड़ी माँ पढ़ाती थी, ब्रह्मा भी पढ़ता था, ओम राधे भी पढ़ती थी।
बाबा से एक प्रूफ तो हासिल कर सकते हैं।
है?
आदि तो आदि कहते हैं ना?
है?
तो आदि में
अब तुम प्राप्त तो सब कुछ कर सकते हो, लेकिन जो प्राप्त कर सकते हो वो बाप का बताया हुआ प्राप्त कर रहे हो या प्रैक्टिकल में तुम्हारे पास है?
आदि तो हम कहते
तो आदि में पता था?
पता नहीं।
आदि में बाप था कि नहीं? तो फिर पता ही नहीं था तो नहीं था।
नहीं, यमा बाबा ने जब साक्षात्कार का राज बड़ी माता को सुनाए तो
इस
प्रकार से उनको जन्म हुआ ब्रह्म बाबा का, ब्राह्मणी जन्म।
हाँ,
फिर अभी ये जो संगम में लक्ष्मी नारायण थे सरस्वती की लक्ष्मी तो छोटी माँ बन रही
है
अगर समझाया गया है तो
हाँ?
उन्हीं से फिर दोबारा ब्रह्मा का जन्म हो रहा है
ब्रह्मा का जन्म हो रहा है
संगमी लक्ष्मी नारायण का पैदा है
संगमी लक्ष्मी नारायण का जन्म 76 में हाँ तो 76 में मम्मा छोटी मम्मा से जन्म हो रहा है
अभी 2018 में लक्ष्मी नारायण की प्रतिष्ठा फिर 2036 में कृष्ण की जन्म हो रहा है
हाँ।
तो फिर अभी उसने अपने को क्लियर होता है आदि तो अंत की बात
आदि सो अंत क्या सत्युग में अंत होगा हाँ हाँ नहीं
तो फिर अभी कृष्ण का जन्म से हैं
ब्रह्मा बाबा ने उनको राज सुनाया छोटी माँ को उल्टा बोल रहे हो
जैसे कि कह रहे हैं बड़ी माता जी को ब्रह्मा बाबा ने अपने साक्षात्कारों का राज सुनाया उसी तरह इसलिए थोड़ी देर में उनके बताएगा उसी प्रकार से उनको ब्राह्मण
ब्राह्मण का जन्म हुआ
ब्रह्मा बाबा की
माने मम्मा का बड़ी माँ का ब्राह्मण का जन्म नहीं हुआ
ब्रह्मा बाबा की मुख्य ब्रह्मा
से ब्राह्मण पैदा हुए तो ब्रह्मा तो पहले बड़ी माँ बनी हाँ ब्रह्मा बाबा को तो बहुत बाद में पता चला पहले तो 8 को पता चला तुम तो बहुत पीछे हो अभी बहुत सी बातें भूल ही जाते हैं और क्या ऐसी बात नहीं तुम्हारा भूत सारा सत्यानाश किए हुए है और
2004 के बाद
सूर्यवंशी स्थापन हुआ
2007 के बाद सूर्यवंशी शुरू हुआ
हाँ
अभी उसको ब्राह्मण क्या है क्या सूर्यवंशी संगठन में जो जन्म हुआ उसका उनको क्या
सूर्यवंशी ब्राह्मण नहीं होते हैं ब्राह्मणों के बीच में पहली कुरी ब्राह्मणों की सूर्यवंशी की नहीं है उसको निकाल के अलग ही कर दे रहा है ब्रह्मा कुमारियों ने ब्राह्मण कुल से क्या एडवांस पार्टी को ही अलग कर दिया वो ब्राह्मण है ही नहीं एडवांस पार्टी वाले क्या हैं शंकर पार्टी वाले वो शूद्र हैं तुमने सूर्यवंशी पार्टी को ही अलग कर दिया हाँ हाँ
कम से कम 5-7 तो रहेगा तो गीता पठन चला लेते
हैं
पांच सात में रहेगा तो गीता पठन कैसे
5000 वर्ष
गीता पाठशाला में 5 आत्माएं होनी चाहिए
हाँ होनी चाहिए
पहले 7 आदमी से चालू गीता पाठशाला
पहले 7 लोग बोल रहे हैं 5 बोल रहे हैं
कौन सी गीता पाठशाला में
किलोमीटर
अच्छा अच्छा वहाँ 7 थे पहले
पहले 7 थे
हाँ
माता जी चल रहे हैं 5 आदमी से
हाँ
और बाहर से एक भाई आता है अपना गीता पाठशाला वाले शहर
हाँ
गीता पाठशाला का नाम चलाने के लिए
सेवा करो सर्विस करो और निकल आएंगे वो तो झाड़ है पुराने पत्ते झड़ते रहते हैं नहीं नहीं निकलते रहते हैं
बाबा
हाँ
उनका वार्तालाप 808 में बताया गया शिवाजी के माँ जीजाबाई के बारे में बताया
हाँ।
भाई ने पूछा था तो जीजा भाई बड़ी माँ का बात है
बाबा
ने बताया जिन्होंने जीते थी सर्ग में गया
हाँ।
वो उनके लिए बताया मतलब छोटी माँ बात
छोटी माँ जाती है जीते थी सर्ग
नहीं ऐसा ही बताया गया
बड़ी माँ नहीं जाती है हैं
बाबा ने
बड़ी माँ ही
वो छोटी माँ जीते जी स्वर्ग में जाएगी, बड़ी माँ नहीं जाएगी।
बच्चे के बारे में बताया के बारे में,
हाँ हाँ,
और शिवाजी का पाठ बाबा का हुआ तो फिर अभी
उसकी अम्मा का पाठ किसका हुआ? शिवाजी की अम्मा का पाठ किसका हुआ?
लक्ष्मी के बारे में
बताया। लक्ष्मी के बारे में नहीं बताया, तुम हैं तो दोनों ही लक्ष्मी, लेकिन जी जा किसके लिए कहा जाएगा? जी और जा, तो मरा हुआ है उसके लिए कहा जाएगा या जी जो जिंदा है उसके लिए कहा जाएगा? जी जी और जा। अरे वो तो जिंदा है ही, उसके लिए क्यों कहा जाए जी? जो जिंदा है उसके लिए नहीं कहा जाएगा जी, जो मरा हुआ है उसके लिए कहेगा जी जा, जिंदा हो जा और जा। तो ब्राह्मणों की संगमिक दुनिया में कौन मरता है और कौन जिंदा हो जाता है? बोलो ना, बगले मत जाको, जो बोलो सीधा। हाँ, ब्राह्मणों की दुनिया में छोटी माँ का पार्ट है या बड़ी माँ का पार्ट है जीने मरने का? बड़ी माँ का पार्ट है, तो जी जा माने जिंदा हो जा एडवांस ज्ञान में, और जा नहीं दुनिया में। जाती तो दोनों ही है, छोटी माँ को भी जाना है और बड़ी माँ को भी जाना है, आधा आधा है। विजय माला है राइट ईयर और रुद्रमाला है लेफ्ट ईयर, दोनों के आधे आधे मड़के हैं, सवा दो लाख राइट ईयर और सवा दो लाख लेफ्ट ईयर, दोनों ही मिलकर के जाएंगे नई दुनिया में, जीवन रहते रहते जाएंगे, यह शरीर उनका मिट्टी में मिल जाएगा है? जीवन रहेगा।
बाबा एक माता जी पूछ रहे हैं, 2018 में जब 4.5 लाख पहुँच जाएंगे
4.5 लाख पहुँच जाएंगी, ये आपसे किसने बताया? कौन सी मुरली में पढ़ लिया आपने? माता जी से पूछो कि माता जी ने ये मनमत कौन सी मुरली में से निकाली, पूछो पूछो पूछो। अरे ब्रह्मा जी बाद में बनो, पहले उनसे पूछ तो लो, आपके मुख का लोन तो ले लिया, आप उनसे पूछ तो सकते हैं। साढ़े 4 लाख 2018 में संपन्न बन जाएंगे, ऐसा किसी मुरली में बोला? क्लैरिफिकेशन बोला नहीं? प्रत्यक्षता हो जाएगी, प्रत्यक्षता होना माने बच्चा पैदा होना, जन्म होना माने प्रत्यक्षता होना, शिव जयंती माना जयंती माने जन्म होना, तो क्या 4.5 लाख का जन्म हो जाएगा, ऐसा किसी मुरली में बोला? तो सही सही बात पूछो उनसे, पूछो सही सही प्रश्न पूछो।
है 7 शादीशुदा थी, राधा शादीशुदा थी, अपने परिवार में किस विष्णु से ही प्यार करती थी, माना वो यही से बाहर है क्या, इसीलिए शिव रक्षक बना रहा?
एडवांस में है, एडवांस परिवार में है, हम पूछते हैं वो आप बात बताओ, एडवांस परिवार में है, बाहर है ना बस है?
शादीशुदा
यहाँ ब्राह्मणों की दुनिया में शादीशुदा कौन होता है? यहाँ पति कौन होता है द्रौपदियों का? पति माने क्या होता है? रक्षक। तो ब्रह्मा कुमारियां जो सेंटर संभालती हैं उनको कोई रक्षा करने वाले हैं या ऐसे ही हैं? उनकी कोई रक्षा करने वाले भाई हैं या नहीं है, है? और
त्याग किया अभी और अभी भी कर रही है ऐसा है।
हाँ तो नई बात थोड़ी, जो कहा है वो तो सही कहा है।
चार सब्जेक्ट में पास होना है तो याद का पास, याद में पास हो गए
तो चारों पास हो जाए।
चारों सब्जेक्ट में पास होना है तो याद में पास हो गए, चारों सब्जेक्ट
पास हो जाएंगे। याद में फेल तो चारों में फेल माने जाएंगे।
बाबा ये
तो
कहा गया है
मनन चिंतन भी तो एक याद है। मनन चिंतन जो करेंगे उसमें बाबा की मुरली याद आएगी कि नहीं? मुरली से प्यार माने मुरलीधर से प्यार है या नहीं है? है तो बस याद उसमें भी समाई हुई, वो सेकेंडरी याद है, फर्स्ट क्लास याद नहीं है। याद में कैटेगरी इसलिए है कि याद अब विचारी हो जाए तो वो सर्वश्रेष्ठ याद है, वो लास्ट में ही होगी जब पूरा वैराग आएगा। अभी जो भी याद चल रही है वो विचारी याद चल रही है कि अब विचारी याद चल रही है? है कैसी चल रही है? 24 घंटे में जो भी हम याद करते हैं उसमें ज्यादातर परसेंटेज विविचारी याद का है कि अभिविचारी याद का है? विविचारी याद का है।
बाबा ये भी कहा गया है तुम्हारी याद से तुम पवित्र नहीं बनते हो, तुम्हारी याद से तुम पवित्र नहीं बनते हो, और बाप सभी से तुम बच्चों को याद करता है, इस प्रकार से तुम बच्चे पवित्र बनते हो।
हाँ तो या तो किसने कहा कि सेवा न करो? 24 घंटे सेवा करो, 24 घंटे सेवा करेंगे तो बाप ज्यादा याद करेंगे। और फिर सेवा भी चार तरह की होती है, एक जिसकी सेवा की अभी तो सेवा कर दी, पीछे गए हराम ज्यादा साला उल्लू का पंखा, तो ये कैसी सेवा हो गई? तत्व प्रधान हुई या तमो प्रधान है? तमो प्रधान हो गई। जिसकी सेवा करो उसके प्रति भावना रखनी चाहिए कि हम जिसकी सेवा कर रहे हैं उससे बाबा का बच्चा बनेगा उम्मीद है, ये श्रेष्ठ कार्य करके दिखाएगी आत्मा। सेवा भी चार प्रकार की होती है, सतो प्रधान, सतो सामान्य और तमो प्रधान। तमो प्रधान सेवा का फल कलयुग में मिलेगा और सतो प्रधान सेवा का फल सतयुग में मिलेगा, रजो प्रधान सेवा का फल द्वापर में मिलेगा। ये हिसाब है। और